नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से वहां के लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। डॉ जयशंकर ने आज लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्रों में लग्जमबर्ग के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना भी की। डॉ जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए दशकों से शिविर चलाने की भी आलोचना की।
कई दशकों से वहाँ आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 13 पर 65 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के अनुसार 7 महिलाओं सहित इन नक्सलियों ने पूना मार्गेम पुनर्वास पहल के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि ये माओवादी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माइड डिवीजन और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया। पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक दलों को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को हत्या मामले में कथित वीआईपी बताते हुए उन पर निशाना साधने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोक लगाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी को पीएसएलवी C-62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की है कि उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे 10:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में अवसंरचना विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना तैयार की है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक संगठित ढांचा बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश के नौगांव में पैसे छीनने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर 25 वर्ष के युवक मिथुन सरकार की नहर में छलांग लगाने से मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। ये घटना रविवार दोपहर महादेवपुर उप जिला के चकगौरी बाजार इलाके में हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के T20 विश्व कप 2026 के बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज कर दी है। BCB ने सुरक्षा कारणों के चलते T20 विश्व कप के लिए भारत आने से मना किया है। दोनों संस्थाओं के बीच हुई वर्चुअल बैठक में ICC ने कहा कि BCB के पास अंतिम समय में मैच स्थानांतरित करने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि BCCI ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए राष्ट्राध्यक्ष के समान सुरक्षा का वादा किया है। भारत की PV सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को सीधे सेटों में 21-13, 22-20 से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान में शीतलहर का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस बीच देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।